Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयः नष्टप्रायशोऽवध्येषु नित्यं भागवत सेवया भगवती नित्यमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी ग्रन्थराज श्रीमद्भागवतं दशम स्कन्ध पञ्चमाध्याय श्लोक संख्या 10529 श्रीनन्द उवाच अहो ते देवकी पुत्र कंसेन बहव हता एकावशिष्टा बोर्जा कन्या शापी विवम गता ओहते देवकी पुत्रा वंशेना बहवहता एकावशिष्टो वर्जा एकावशिष्टो वर्जा कन्या श्वापी दिवं गता ओहते देवकी पुत्रा कंसेना बहवहता एकावशिष्टो वरजा कन्या श्वापी दिवं गता ओहते देवकी पुत्रा वंशेना बहवहता एकावशिष्टो वर्जा कन्या श्वापि दिवं गता
पुत्रः
श्रीनन्द उवाच आहते देवकी पुत्रा श्री नंद उवाच। नंद महाराज ने कहा ओहो हाय ते तुम्हारे देव की पुत्र तुम्हारी पत्नी के सारे पुत्र कंसेना कंस द्वारा बहवा अनेक हता मरी गई एका एक अवशिष्टवा बची हुई अब राजा सबसे छोटी कन्या कन्या शाओपी ओहो भी दीवंगता स्वर्गलोक को चली गई। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। नंद महाराज ने कहा हाय राजा कंस ने देवकी के उत्पन्न तुम्हारे अनेक बालकों की मार डाला। आओ तुम्हारी संतानों से सबसे छोटी एक कन्या स्वर्गलोक को चली गई। श्रील प्रभुपाद जी की तरह तात्पर्य जब वसुदेव ने नंद महाराज से ये जान लिया कि कृष्ण के जन्म तथा यशोदा की कन्या से उनकी बदले जाने का रहस्य आप भी खुला नहीं है तो वो प्रसन्न थे क्योंकि सब कुछ ठीक से चल रहा है। यह कहकर कि वसुदेव की सबसे छोटी संतान उनकी पुत्री स्वर्गलोक चली गई नंद महाराज ने ये इंगित किया कि उन्होंने ये जात नहीं कि ये कन्या यशोदा से जन्मी है और वसुदेव ने उसे कृष्ण से बदल लिया। इस तरह वसुदेव की शंकायों का निराकरण हो गया। ओम अज्ञानतिमिरन्तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनाविष्टं साधितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मायं ददाति स पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीचितपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सकृजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं शाद्वैतं शावदूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदानां सहगणललिता श्रीविशकन्नितंश्च नमयं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनीति नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्यत देशताडिने वंशाकल्पतरुवश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
नमो महाभगन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तत्व कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशोभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि श्री गौर भक्त बिंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखम गुरुद्वाचलम पुंगम नंगते किं यत्किपातमहं वंदे परमानंद माधवम। हरे कृष्ण, जिस प्रसंग चल रहे इसका नाम है नंदमाला तथा वसुदेव का भेद। वास्तविक में इसका पहला श्लोक में हम लोग अध्ययन की कि वसुदेव वास्तविक में दुखी क्यों दुखी है ना। अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण छोड़कर भी भौतिक दृष्टिकोण भी और कोई देखे कि एक परिवार में अगर साथ साथ आठ आठ पुत्र ऐसे करके गुजर गए, निधन हो गए, उनको धर्म पत्नी को सुख दिला नहीं पाते हैं, वास्तविक रूप से वो पति कभी सुख नहीं रह सकते हैं। सुखी होने का कारण जो बताया कि धर्म पालन, आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तुष्टि के कार्य करना है तो परिजन का सहयोग होना चाहिए। अगर परिजन अगर आपको सहयोग नहीं दे तो सुखी बनना बहुत मुश्किल होता है। जिस तरीके से वसुदेव दुखी हो गई इसके कारण कि कंस मेरा एकदम परिजन ही है, फिर भी उनके द्वारा मेरे को दुख मिलती रहती है और उनके कारण मेरा परिवार को मैंने कभी शांति दिला नहीं पाता। मेरा धर्मपत्नी, मेरा एक एक करके सब बच्चा निधन हो गए, धर्मपत्नी भी सुखी नहीं है। मेरा तो बात छोड़ दीजिए, धर्मपत्नी भी सुखी नहीं है, जिसके लिए वसुदेव दुखी। और इस दुख का कारण जब उन्होंने बताए तो नंद महाराज कहने लगे ये तुम्हारा कारण नहीं है, ये तुम्हारे लिए तुम दुख प्राप्त नहीं कर पाते हो। मेरे को पता है कि तुम्हारा एक एक करके सब पुत्र निधन हो गए, एक ही कन्या थी वो भी स्वर्गलोक में चला गया, लेकिन जो दुख आपको मिल रहा है ये दुख आपके कारण नहीं है, ये आपका अदृष्ट का कारण, अदृष्ट का कर्म फल का कारण ये दुख आपको मिल रहा है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर इस अदृष्ट को बहुत सुंदर एक तात्पर्य बताया, लिखा है कि अदृष्ट किसको कहते हैं ना। अदृष्ट होता है कि पूर्व जीवन में संबंधी की तो ऐसा कुछ कार्य आपने किए थे जिसके कर्म फल आपको इसी जीवन में भोगना पड़ता है, इसको कहते हैं कि अदृष्ट का दृष्ट कर्म फल। तो आपने जो दुख मिल रहा है आपका जीवन में, ये दुख मिलने का कारण आप नहीं है, ये दुख मिलने का कारण कंस भी नहीं है, ये पूर्व जीवन का अदृष्ट का कर्म फल आपको भोगना पड़ता है। श्री विष्णु चौधरी ठाकुर इसको ही कहते हैं कि अनर्थ। विष्णु चक्रवर्ती पाद अनर्थ को चार भाग में विभाजित की, चार भाग में उन्होंने अनर्थ को विभाजित की, जिसका बहुत ही सुंदर एक पॉइंट्स है, जिसमें पहला भाग का नाम है स्वरूप भ्रम, दूसरी भाग का नाम लिखा है अशोतिष्णा, तीसरी है अपराध, चौथी है हृदय दैवल्य। चारों भाग में विष्णु चक्रवर्ती पाद ये अनर्थ को विभाजित किया। और ये जो वसुदेव जिनका दुख मिल रही है जीवन में, ये दुख मिलने का कारण है हृदय दैवल्य। हृदय दैवल्य का कारण व्यक्ति आसक्त हो जाता है, और इस आसक्ति का कारण जीवन में उनका दुख आ जाता है। भले भी वसुदेव का हृदय से आपने एक एक करके सब पुत्रों को कंस ने निधन कर दिया, अंतिम में एक कन्या हुई वो भी स्वर्गलोक चला गया, लेकिन आसक्ति बुज्जित हो नहीं पाए वसुदेव। क्यों आसक्ति बुज्जित हो नहीं पाए? नहीं, यही है हृदय दैवल्य का कारण, ये भी एक प्रकार का अनर्थ, और इसी अनर्थ के कारण जीवन में उन्होंने दुख प्राप्त की थी। और ये जब नंद महाराज ने बताया कि ये तुम्हारा ये नहीं है, तुम जैसे सोच रहे हो कि कंस के द्वारा तुमको जीवन में दुख मिला है, ये नंद महाराज और वसुदेव का कथोपकथन में पहले बताया कि धर्म पालन, आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तुष्टि कार्यों के लिए परिजन का सहयोग होना चाहिए। धर्म पालन के लिए परिजन का सहयोग जो कि उन्होंने नहीं मिला था शुरुआत से, कि कंस अपना परिवार का ही है, कोई बाहर का कोई नहीं है, अपना परिवार का होकर भी कंस के द्वारा उनको इतना दुख मिले, जिसके लिए कहा कि परिजन को सहयोग नहीं मिले, इसके लिए दुख का कारण। और इसको कहते कि अनर्थ, इस अनर्थ हृदय दैवल्य के कारण इस अनर्थ। विष्णु चमत्कार इसमें वर्णन किया कि चार प्रकार अनर्थ में ये है चौथा नंबर अनर्थ जिसका है हृदय दैवल्य। भक्तिविनोद ठाकुर इसका पर वर्णन की क्योंकि इस हृदय दैवल्य का कारण हेतु एक तो कर्मफल है, एक अदृष्ट कर्मफल है, पूर्व जीवन का कर्मफल में भोगना पड़ता है। दूसरा कि हृदय दैवल्य का कारण हेतु वसुदेव का जीवन में दुख आ गया, क्यों ना पूर्ण आसक्ति अपना परिवार, अपना धर्म पत्नी, अपना बच्चा, आपका कन्या, पूर्ण आसक्ति रहती है, स्वाभाविक रूप से सबको पर आसक्ति रहती है। परिवार का माता पिता अगर बच्चा को आसक्ति नहीं रहे तो आगे बढ़ना मुश्किल होता है, और वही आसक्ति जीवन में दुख के कारण हो जाती है, जिसके लिए वसुदेव का जीवन में दुख आ गया कि पूर्ण आसक्ति हो गए थे अपना बच्चा का होकर। इसका कहते हैं कि हृदय दैवल्य का कारण ये आसक्ति हो गई। और ये हृदय दैवल्य को किस तरीका से आप निभा सकते हैं उसमें कृष्ण चक्रतिपाद वर्णन किए कि हृदय दैवल्य का कारण जब आपका हृदय में कुछ दुर्बल मतलब कुछ वीक पॉइंट आ जाते हैं, इसी वीक पॉइंट के द्वारा इसी दैवल्य का कारण आपका चित्त विभ्रम होते हैं, मतलब आपका माइंड बिकम ए करप्टेड, मतलब आपका माइंड सही नहीं रहता है, मन सही नहीं रहता। जब आपका किसी के ऊपर आसक्ति रहते उनके कारण उन्होंने कुछ ऐसा कुछ कर्म किए, इसका भगवान ठाकुर व्याख्या किए कि भले भी आप सोच लीजिए कि आपका परिवार में आपका किसी के ऊपर पूर्ण आसक्ति है, भले भी आपका कोई एक बच्चा के ऊपर आपका पूर्ण आसक्ति है, लेकिन जिस तरीका से आपने सोच लिए थे कि मेरा बच्चा इसी तरीके से पढ़ाई करे, इसी तरीके से नौकरी मिले, इसी तरीके से काम करे, इसी तरीके से शादी विवाह करे, यह आपका मन में एक आशा है, क्योंकि हृदय दैवल्य का कारण। जब आपने देखा कि इतने मैंने बच्चा को इतने अच्छे तरीके से पाला, इतने अच्छे तरीके से पढ़ाई करा है और सब कुछ करा, इतने अच्छे तरीके से शादी विवाह करा दिए, लेकिन बाद में मेरा बच्चा बिगड़ गया, तब माता पिता का जीवन में दुख आ जाता है। इस दुख का कारण एक ही है, हृदय दैवल्य है, कि अधिक से अधिक परिमाण आसक्ति का कारण व्यक्ति का जीवन में दुख आ जाता है। और जब जीवन में दुख आता है तो योर माइंड घूमते रहता है इधर उधर, चंचला ही मनो कृष्णा, मन आपका इधर उधर घूमते रहते हैं। और इसी हृदय दैवल्य का कारण आपको क्या होता है, जब आप भक्ति मार्ग में हो, भक्ति मंत्र पर बहुत अच्छे तरीके से इसका वर्णन किया कि भक्ति विनोद वाणी वैभव बल के ग्रंथ है, बहुत सुंदर, जिसमें अनर्थ निवृत्ति के ऊपर बहुत ही अच्छा से उन्होंने वर्णन भी किए, जिसमें लिखा है कि अगर इसी हृदय दैवल्य अनर्थ का कारण कृष्ण अनुशीलन कार्पण्य हो तथा, मतलब ये हृदय दैवल्य के कारण जब आपका हृदय में कुछ दुष्ट आसक्ति आ जाते हैं तब कृष्ण अनुशीलन बाधा अथोरा हो, मतलब कृष्ण अनुशीलन में आपका विघ्न होता है, ये सब हृदय दैवल्य का कारण। तीसरा पॉइंट बताए कि ये हृदय दैवल्य का कारण धन जन और दोनों स्वभाव को मैंने स्वीकार नहीं कर पाता। कहते कि बिका में हम मिले, हम लोग सब बोलते हैं हर समझिए यू शुड बिका में हम मिले, लेकिन ये दैनो भाव हम लोग प्रकटित नहीं कर पाते, क्यों ना ये हृदय लेवल का कारण। चौथा पॉइंट में भक्ति विनोद ठाकुर बताया कि इस हृदय लेवल का कारण आपने अन्य जीव का ऊपर आपको मतलब एक्शन लेने का कोई अत्याचार करने का पोटेंसी, मतलब आपको मन में विचार रहते हैं कि किसी को मेरे को कुछ करना है, इसको दबाना है, इसको सुलाना है, कुछ करना है, ये भी सब हृदय दैवल्य का कारण। उन्होंने बताया कि एक ही परिवार में अगर एक परिवार में माँ बाप का चार चार बेटा है तो चार चार बेटा में पहली पुत्र बहुत अच्छा है, बहुत विद्वान है, बहुत पढ़ाई की है, माँ बाप को अच्छे तरीके से श्रद्धा वगैरह कर रहा है, लेकिन उसमें अंदर जो कनिष्ठ पुत्र है वो माँ बाप को श्रद्धा नहीं कर रहा है, लेकिन माँ बाप का हृदय में बेटा बेटा होता है। लेकिन जीवन में जब दुख आ जाता है कब, जब देखा कि अरे बेटा को मैंने इतने अच्छे तरीके से पाला, इतने अच्छे तरीके से पढ़ाई कराया, लेकिन बाद में मेरा बेटा मेरा बात नहीं सुनता, तब उनका जीवन में दुख आ जाता है। लेकिन वसुदेव का इसी तरीके से नहीं हुआ था, वसुदेव का किसी हुआ था ना कि अपना धर्म पत्नी, अपना पुत्र, सब अपना है, अपना धर्म पत्नी को मैंने सुख दिला नहीं पाता, अपना एक एक करके सब पुत्र निधन हो गए, एक ही कन्या वो भी स्वर्गलोक में चले गई, जिसके लिए मैं दुखी हूं, अपना परिवार को मैं सुख दिला नहीं पाया। तो भगवान भक्त को तीन प्रकार से अपना स्वरूप को प्रकाशित कर देते हैं, तीन प्रकार में भक्त कृपा करें प्रभु ये तीनों स्वरूपे साक्षात आवेश और आविर्भाव बोलते जय श्री श्री राधा बिंदारी भगवान की। तीन रूप में भगवान भक्तों को कृपा करते हैं, भक्त कृपा करें प्रभु तीन स्वरूप, कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी चैतन्य चैतन्य ग्रंथ में बताए भक्त कृपा करें प्रभु तीन स्वरूप, आविर्भाव आवेश और साक्षात रूपे, आदि लीला का एक श्लोक है कि भगवान भक्त को तीन रूप से अपने को प्रकाशित कर देते हैं, एक आवेश रूप, एक साक्षात रूप और एक आविर्भाव रूप। इसमें विश्लेषण किया है कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी कि आवेश रूप किसको बोलते हैं ना, भगवान का शक्ति को संचार करने वाला जो पार्षद उसको कहते हैं कि आवेश रूप, भगवान का शक्तावेश अवतार को अवतारित करने वाला पार्षद को कहते हैं कि आवेश रूप, और साक्षात रूप कौन है जहां पे स्वयं भगवान आकर उपस्थित हो जाता है उसको कहते हैं साक्षात रूप, और आविर्भाव रूप जहां पे स्वयं भगवान प्रकटित होते हैं। आप तो वर्णन किया कि साक्षात रूप किस तरीका से, जैसे कि सची माता जब भगवान के लिए बहुत कुछ खाना बनाए, बहुत पकड़ व्यंजन बनाए, आलेखों के सामने जाकर सची माता ने अर्पण कर दिए व्यंजन को, तो जब अर्पण की तब उधर महाप्रभु नहीं थे सामने, लेकिन अर्पण करने का समय सोची माता देख रहे कि स्वयं महाप्रभु कहां से ना कहां से आकर वो भोजन को ग्रहण की, इसको कहते कि साक्षात रूप, साक्षात स्वरूप। जब शिवा संगन में संकीर्तन चल रहे थे, महाप्रभु उधर नहीं थे संकीर्तन में शुरुआत में, बहुत सारे गौरी और पार्षद बिंदु बैठकर एक साथ संकीर्तन कर रहे, लेकिन महाप्रभु को कहां से पता चल गए, महाप्रभु तुरंत उधर उपस्थित हो गए। इसको कहते कि साक्षात रूपे तो भजन तुम्हार। लक्ष्मणदास ठाकुर इसमें वर्णन किए, साक्षात रूपे न तव भजन तुम्हार। तो साक्षात रूप में भगवान प्रकटित हो जाते हैं, और आवेश रूप में भगवान किस तरीके से प्रकटित होते हैं। भगवान का एक नित्य सिद्ध पार्षद जिसको हृदय में भगवान ने शक्तावेश अवतार रूप से शक्ति संचार की, जिसका नाम है नकुल ब्रह्मचारी। जिन्होंने चैतन्य चरितमृत ग्रंथ पढ़ लिए उनको जरूर पता होगा कि ये नकुल ब्रह्मचारी का हृदय में भगवान शक्तावेश अवतार रूप से शक्ति संचार की थी, जिसके लिए कहते कि शक्ति रो आवास है नकुल ब्रह्मचारी। तो नकुल ब्रह्मचारी के हृदय में भगवान शक्तावेश अवतार रूप से आपने को प्रकटित की थी, इसको कहते कि आवेश। आवेश स्वरूप है तहार हृदय। और तीसरा वर्णन किए कि आविर्भाव रूप, आविर्भाव रूप किसका हृदय में भगवान प्रकटित हुए थे, ना प्रद्युम्न ब्रह्मचारी, जिसका और एक नाम महाप्रभु रख दिए थे नृसिंहानंद ब्रह्मचारी। चैतन्य चैतन्य आदि लीला में विस्तार रूप से, अंत लीला में भी इसका वर्णन किए है। तो अरे ये तीन स्वरूप, पहला स्वरूप क्या है ना आविर्भाव, दूसरा स्वरूप क्या है आवेश, और तीसरा स्वरूप है साक्षात। यही तीन स्वरूप को, यही तीन स्वरूप का जो रस, इसी रस को आस्वादन किए थे कौन ना शिवानंद से। और कोई गौरी पार्षद ये तीन रस को एक साथ आस्वादन नहीं कर पाया। इवन अद्वितीय आचार्य प्रभु, नित्यानंद प्रभु, कोई भी ब्रह्मचारी, कोई भी गौरी पार्षद ये तीन रस को एक साथ आस्वादन नहीं कर पाया, एक्सेप्ट शिवानंद सेन। शिवानंद सेन ऐसे एक महान आचार्य जिन्होंने ये साक्षात आवेश आविर्भाव तीनों रस को एक साथ उन्होंने आस्वादन किए थे। किस तरीके से उन्होंने आस्वादन की कि शिवानंद सेन ऐसा कोई मामूली नहीं है। शिवानंद सेन कौन है ना, वृंदावन में बीरा और दूति ये दोनों गोपी का एकोच्छत्त मिलन शिवानंद से। लक्ष्मणदास ठाकुर वर्णन कर रहे कि वीरा और दूती वृंदावन गोपीर मिलित तनु हन से शिवानंद। वृंदावन दो गोपी, एक वीरा और एक दूती, ये दोनों का मिलित तनु ये शिवानंद सेन। जो शिवानंद सेन तीनों स्वरूप को एक साथ उन्होंने आस्वादित किए थे। तो आइए आज तुम लोग चर्चा कर लेते हैं शिवानंद सेन किस तरीका से ये तीनों रस को आस्वादन किए थे। ये तीनों रस आस्वादन करना ऐसा कोई मामूली नहीं है। पूर्व जीवन का संबंध चित्त कहे कहो अनाय। वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत ग्रंथ में वर्णन की है, संबंध चित्त करे करो अनाय। शिवानंद सेन ऐसे एक महान आचार्य जिन्होंने ये तीनों रस को एक साथ आस्वादन किए थे। किस तरीका से उन्होंने आस्वादन किसको कि हर साल जगन्नाथ पुरी में रथ यात्रा होने का पहले बंगो देश से बहुत सारे भक्तों को लेकर जाते थे शिवानंद सेन महाप्रभु को दर्शन करने के लिए जगन्नाथ पुरी में। आज शिवानंद सेन का कार्य था ये जितने सारे भक्त जा रहे हैं सबको अच्छे तरीके से देखभाल करना। तो शिवानंद सेन बड़ा घर का है, उन्होंने एक जब महाप्रभु ने ये सेवा अर्पित की त तब शिवानंद सेन सार्वजनिक रूप से आनंदित हो गए ये सुनकर। कत भाग्य हईयाछिल जीवने आमार ताहाते बर्तिनी आमी कहो किछुआ, मतलब मेरा जीवन कितना भाग्यशाली है कि मैंने इतने बड़े एक सेवा मिला महाप्रभु का कृपा से। महाप्रभुर कृपाए तार तरही आर आनंद वर्धने करो मोहिति छबा। महाप्रभु मेरे को इतना कृपा की कि मैं ये पूरा गौड़ीय पार्षद को आनंद वर्धन करने के लिए मैं प्रयास कर सकता। तबनी कृपाली आर कृपा नया छाड़ आमारे अंचित आजि तहित को, आमारे अंचित आजि तहित तुमार। वृंदावन दास ठाकुर वर्णन की है, अंचिल तबु आर कहिनी को आर। अच्छा अरे मेरे को कितना मैं भाग्यशाली हूं कि मेरे को ऐसा एक सेवा मिला कि सबको देखभाल करना, तो सबको लेकर जा रहा है शिवानंद सेन। क्योंकि शिवानंद सेन बीरार दूती गोपीर मिलित तनु, और बीरार दूती कौन जो कि श्रीमती राधा रानी को पुष्प अर्पित करते थे हर दिन। और बीरार दूती श्रीमती राधा रानी के हाथ में हर दिन पुष्प अर्पित करने वाले, और ओई मिलित तनु शिवानंद सेन। श्रील प्रभुपाद शिवानंद सेन का चरित्र विश्लेषण के बहुत ही अच्छे से इसका वर्णन है चैतन्य चैतन्य ग्रंथ में तात्पर्य में, कि शिवानंद सेन ऐसे एक महान चरित्र है जिनका कथा सुनने में अगर जितने भी पाखंडी व्यक्ति हो, पाखंडी व्यक्ति भी अगर शिवानंद सेन का इसी तरीके से कथा को श्रवण करे तो भक्ति मार्ग में आना उनके लिए एकदम सहज हो जाता है। चैतन्य चैतन्य ग्रंथ में आदि लीला में शायद दशम परिच्छेद में शिवानंद सेन का ऊपर श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य है, दशम नहीं शायद एकादश परिच्छेद शिवानंद सेन का ऊपर प्रभुपाद जी ने विश्लेषण की थी इस तरह से। कैसे एक महान पर्सनालिटी गौड़ीय पार्षद जिन्होंने तीन रस को आस्वादन किया, किस तरीके से रस को आस्वादन किए उन्होंने, पहले साक्षात रूप से आस्वादन किए। मैं एक एक करके मैं वर्णन कर रहा हूं, पहले साक्षात रूप से आस्वादन की थी, दूसरा बार आवेश रूप से आस्वादन किए, तीसरा है आविर्भाव रूप से आस्वादन। साक्षात रूप में किस तरीके आस्वादन की, न शिवानंद सेन गौड़ीय पार्षद को लेकर जा रहा है जगन्नाथपुरी, उसी समय तो ऐसा कोई ट्रेन व फ्लाइट का कोई बंदोबस्त नहीं था। पदब्रजे चले तब जगन्नाथ धाम, वृंदावन दास ठाकुर वर्णन करे चैतन्य भागवत ग्रंथ में, पदब्रजे चले तब जगन्नाथ धाम, जगन्नाथ लहो तुम्हें कहे मधुभाम। उसी समय ऐसा कोई ट्रेन व प्लेन का कोई ऐसा अरेंजमेंट नहीं था, चल के जाना पड़ता था, और चल के जाना मतलब जंगल नदी ये सब पहाड़ों का होकर जाना पड़ता था। तो एक जगह में एक नदी आ गई सामने, शिवानंद सेन बड़ा घर का है तो शिवानंद सेन साथ में एक कुत्ता को भी ले लिए थे, इसी कुत्ता का ऊपर बहुत ही सुंदर लीला वर्णन किया लोचन दास ठाकुर, ये कुत्ता भक्त संग प्राप्त होने के कारण किस तरीके से भगवत धाम प्राप्त हो गए थे। शायद ये लीला सबको पता होगा, मैं संक्षिप्त रूप से बता रहा हूं कि शिवानंद सेन ये कुत्ता को भी साथ में लेकर चले, बहुत सारे भक्त जा रहे हैं साथ में तो कुत्ता भी पीछे पीछे चल रहा है। तो एक नदी आ गए सामने, तो नदी का सामने जब उपस्थित हो गए तो नाव वाला के बुला लिए शिवानंद सेन ने, तो सबको नाव में बैठा दिए और नाव पार कर दिए सबको। आज शिवानंद सेन को थोड़ा लेट हो गए जाने में, क्योंकि नाव वाले को पैसा चुकाना, हिसाब करना, सब कुछ करके वो थोड़ा लेट हो गए जाने में। और साथ साथ तो कुत्ता भी जा रहा है। कुत्ता ने इतना बुद्धिमान है, बहुत सुंदर इसका वर्णन किया है कुत्ता का ऊपर कृष्णदास कविराज के समय चैतन्य चैतन्य ग्रंथ में अंतलीला का चतुर पंचम परिच्छेद में इसका वर्णन है। किसी को अगर पढ़ना है तो पढ़ सकता है। अंतलीला पंचम परिच्छेद में इसका वर्णन किया है कि एक कुत्ता कितने भाग्यशाली है कि पार्षद के साथ वो भी भगवत धाम पहुंच गए थे। किस तरीके से गए ना, पार्षद को लेकर जब वो नाव में चल रहे थे तो सब पार्षद बिंदु जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ करना चालू की। आर जाने का समय और कुत्ता ने देखा कि जब जय जगन्नाथ इसी तरीके से जय जगन्नाथ हो रहे थे तो कुत्ता ने देह छोड़ दिए नाव में। जब नाव में देह छोड़ दिए तो उसमें साथ एक परम भक्त था जो कि जिसी तरीके से महाप्रभु हरिदास ठाकुर को लेकर समुद्र में नहा के लेकर आए, फिर निर्जात किए, मतलब जब हरिदास ठाकुर का तिरुभाव हुई थी, उसी तरीका से उसी कुत्ता को लेकर उन्हीं पार्षद ने समाधि दी थी। जब महाप्रभु ने ये कहानी सुन ली शिवानंद सेन का मुखारविंद से, तब महाप्रभु ने मेरे को पता था कि वो जो कुत्ता आए वो ऐसा कोई मामूली नहीं है। अगर धाम में कोई कुत्ता भी बसोबस करते वो भी सौभाग्यशाली होते। तत्कर्मवर्तन पूर्व जीवन में ऐसे कुछ काम किए थे जिसके लिए धाम में उसका अवस्थान है। तो महाप्रभु कह दिए कि देखो शिवानंद दुख करियो ना, आपको दुख होने तक कुछ कारण नहीं, क्योंकि शिवानंद सेन का ज्यादा आसक्ति हो गए थे कुत्ता का ऊपर। तो शिवानंद सेन ने दुखी होकर कहने लगे कि प्रभु हम लोग तो सब आ गए अच्छे तरीके से आपका कृपा से, लेकिन हमारा साथ एक कुत्ता थे। बोले मेरे को पता है वो कुत्ता भगवत धाम पहुंच गए। बोलते वो कौन है? बोलता वो वृंदावन लीला का परम गोपी, जिस गोपी कुछ अपराध का कारण, जिस गोपिया ने राधा रानी के चरण में कुछ अपराध की थी, जिसके कारण ये जीवन में उन्होंने कुत्ता का रूप प्रकटित हुआ, और इसी जीवन में भक्त संग मिलने के कारण इसी जीवन में भगवत धाम प्राप्त हो गए। तब आप उन्होंने बताया तो यह साक्षात गुरु। और आवेश रूप से महाप्रभु भक्तों के सामने प्रकटित हुए थे, जिस तरीके से नकुल ब्रह्मचारी महाप्रभु का जिस तरीके से रुचि, जिस तरीके से आवेग, जिस तरीके से भक्ति, उसी तरीके से नकुल ब्रह्मचारी के हृदय में आपने को प्रकटित कर दिए थे। और जब इस जगन्नाथपुरी में जा रहे थे सब पार्षद बिंदु को लेकर शिवानंद सेन, नित्यानंद प्रभु भी साथ में थे, तो साथ में होने के कारण तो एक जगह में जब नाव पार हो गए, नाव पार होने के बाद सबको भूख लग गए, लेकिन भूख निभाने वाला कौन है? न शिवानंद सेन, क्योंकि महाप्रभु ने उनको ही सब कार्य ने अर्पित कर दिए थे कि आपका काम है सबको देखभाल करना। अच्छा से तो शिवानंद सेन को आने में थोड़ा लेट हो गए, क्योंकि वो सब पैसे चुकाने वाले थे, हिजा बड़बड़ किए, बाद में कुत्ता मृत्यु हो गए, उसको समाधि दी, थोड़ा लेट हो गए आने में। तो नित्यानंद प्रभु थोड़ा क्रोधित हो गए थे, कहो कहो शिवानंद कहो तुम्हार मोर भूख लागी अभी कही ची कुमार। अरे यार शिवानंद कहा हो, मेरे को इतना भूख लग गए, अरे अब मेरे को भूख लग गई, आप इसी तरीके से कार्य कर रहे हो, तीनों पुत्र मोरू को तुम्हार। शिवानंद सेन का धर्म पत्नी दुखी हो गया, अरे नित्यानंद प्रभु इतना क्रोधित होकर कह दे कि तीनों पुत्र मरु को तुम्हार, माने तीन पुत्र आपका मृत्यु हो जाए तुरंत। ये तो स्वाभाविक बात है कि कोई माँ का सामने अगर कोई व्यक्ति श्राप दे, ऐसा कोई महान अगर श्राप दे दे तो माता स्वाभाविक रूप से दुखी हो जाती है। तीनों पुत्र मरु को तुम्हार, तो दुखी होकर उन्होंने रोना चालू की। थोड़ा समय बाद शिवानंद सेन आए, आके पूछने लगे रोने का कारण क्या है, क्यों रो रहे हो? बोलते अरे आपने लेट किया हो, देखो नित्यानंद प्रभु ने श्राप दिए कि तीनों पुत्र मरु को तुम्हारे। बोलते अरे आप कितने भाग्यशाली नहीं हो, आपने कितना भाग्यशाली कि स्वयं नित्यानंद बाबू कहेंगे कि तीनों पुत्र मोर को तो मतलब तीन पुत्र को नित्यानंद बाबू स्वयं लेकर चले जाएंगे भगवत धाम में। इसी तरीका से अगर नित्यानंद बाबू कृपा करे तो हम लोग सब एक साथ मरने के लिए तैयार है, लेकिन मेरा तीन ही पुत्र है जो कि भगवान है, जो तीन पुत्र को नित्यानंद बाबू ने कृपा कर दी। तो बाद में सब पहुंच गए थे उधर। तो इसी अवस्था को देखकर शिवानंद सेन के भांजा, नाम मैंने भूल गया उनका, तो भांजा थी, वो भांजा ने एकदम क्रोधित हो गए, अरे इस एक महान पार्षद जो कि स्वयं बलराम वो इसी तरीके से क्रोधित होकर साफ दे रहे हैं, तो सबको छोड़कर अकेला पहुंच गए थे जगन्नाथपुरी में। जब जगन्नाथपुरी में अकेला पहुंच गए, पहुंचने के बाद महाप्रभु अंतर्यामी, महाप्रभु को सब पता हो गए। हाँ, उनका नाम है चैतन्य दास। कहो कहो चैतन्य की वार्ता सुनी लो आज। तो महाप्रभु पूछने लगे कि चैतन्य आप बताओ कौन सा वार्ता लेकर आए, इतना जल्दी कैसे पहुंच गए, कोई नहीं आया नहीं अभी तक, आपने पहुंच गए इतना जल्दी। तुमने कहने लगे कि मैं क्रोधित होकर, मेरे को क्रोध आ गए थे, मैं सबको छोड़कर आ गए। बोलते क्यों आपको क्रोधित आए, बोलते क्रोधित होने का यही कारण कि नित्यानंद प्रभु सबका सामने उनको श्राप दे कि तीनों पुत्र मरु को तुम्हार, तो इसको मैं सहन नहीं कर पाया, इसके लिए सबको छोड़ छाड़ के मैं आ गया। तो महाप्रभु समझ गई ये बात, सुनो सुनो चैतन्य कहो सुनो मोर कथा, और पीलू तुम्हारे आजी गाहो नी जो बैठा। बहुत ही सुंदर वृंदावन दास ठाकुर इसका पैर छंद में वर्णन की है। सुनो सुनो चैतन्य सुनो मोर कथा, और पीलू तुम्हारे आजी कहो ना को बैठा। बोलते सुनो, मैंने आपको बता दो, ये जो नित्यानंद कृपा की है, भक्ता भुक्त अवशेष रोइल तहार, ये जो तुम्हारा मन में जो आ गए जो क्रोधित भाव, ये क्रोधित भाव तुमको नहीं होना चाहिए था। क्रोधित होइले सबे तहो किछु आर, लोचनदास ठाकुर वर्णन के चैतन्य मंगल ग्रंथ में, क्रोधित होइले तब मन किछु पाइबे ना। मन अगर तुम्हारा क्रोधित हो गए तो इस मन के द्वारा कभी आप सुखी नहीं बन पाओ। আমারও অবশিষ্ট রইল তবে আর, তো মেরা যে অবশিষ্ট প্রসাদ যো হ্যায় ই আপ সবকো বাট দেনে, আপকা কাম হ্যায়। তো মহাপ্রভু ইসি তরিকা সে সবকো কৃপা কিয়েছে, তিন স্বরূপ কো এক সাথ দর্শন কিয়ে শিবানন্দ সেন। আবেশ রূপ, আবির্ভাব রূপ আর প্রকাশ রূপ, এ তিনও দর্শন করা মামুলি নেই। তো এই যে চর্চা হ্যায় নন্দ মহারাজ আর বসুদেব কা বার্তালাপ, এসে ট্রানজেকশন কিয়া থা, কিউকি আসক্তি কা কারণ জীবন মে দুঃখ আ জাতা, বসুদেব কা জীবন মে দুঃখ আয়ে ইসকে কারণ कि मेरा एक साथ इतने सारे पुत्र सब निधन हो गए, और वो किसके द्वारा, ना मेरा परम आत्मीय कंस के द्वारा, कंस के द्वारा निधन हो गए, और एक ही कन्या हुई वो भी स्वर्गलोक में चले गए, तो मेरे पास कुछ है ही नहीं, आई बिकम जीरो, मेरे पास एकदम शून्य हो गए। शून्य तब संसार रोइल मरम पाथे, भक्तिविनोद ठाकुर इसका ऊपर चर्चा की एक टिप्पणी में बताए, শূন্য তব সংসার মোড়ি, শূন্য তব সংসার মোড়ো দুঃখ ন কহিবি আড়ি, বলে মেরা সংসার জো হ্যায় মেরে জো ফ্যামিলি হ্যায় একদম বিকা মে জিরো, একদম জিরো হো গয়ে, কুছ হ্যায় নি সাথ মে, সব লোক চলা গয়ে মেরে কো ছোড় কর, মেরা ধর্ম পত্নি কো মেনে সুখ দিলা নি পায়। আপনা মিত্র, আপনা জো পরিবার, আপনা কুটুম্ব জিসকো বলতে, आत्मीय कंस, कंस ऐसे कोई बाहर का नहीं है, अपना कुटुंबों के द्वारा निधन हो गए, जिसके लिए मेरा धर्म पत्ति का मैंने सुख दिला नहीं पाया, जिसके लिए श्लोक में पहले ही वर्णन किए कि धर्म पालन परिजनों का सहयोग के द्वारा होता है, धर्म पालन का कार्य मैंने कर नहीं पाया, क्यों ना परिजनों का सहयोग मेरे को नहीं दिया, कंस मेरे को सहयोग नहीं दिए, जिसके लिए मैंने धर्म पालन नहीं कर पाए, अपना संतान को मैंने रक्षा नहीं कर पाए, अपना स्त्री को मैंने सुख दिला नहीं पाए, क्योंकि परिजन का सहयोग नहीं मिले। धर्म अर्थ काम ये चरितार्थ होता है इसके द्वारा, इसके लिए मैं दुखी हूं। दुख का कारण मेरा यही है कि मैं अपना परिवार को मैंने खुश दिला नहीं पाए, कभी ना मेरा पत्नी को दिला पाए, ना मेरा संतान संतति को मैंने दिला पाए, अपना परिजन के द्वारा ही मेरे को दुख मिले। नंद महाराज कह दीजिए ये तुम्हारा अदृष्ट का फल, अदृष्ट कर्म फले साहित्य बचुआ, भक्ति ठाकुर इसका वर्णन कि ये भी एक प्रकार अनर्थ, हृदय देवल्य का अनर्थ के कारण जीवन में अदृष्ट का फल भोगना पड़ता है, और ये हृदय देवल्य अनर्थ का कारण चित्त विभ्रम हो जाता है, मतलब आपका मन फ्लक्चुएटेड हो जाता है, और जब मन फ्लक्चुएटेड हो जाता है तब आप सोचते रहते हो कि मेरा ये जो परिवार दुखी है, मेरा परिवार दुखी होने का कारण मैं स्वयं माई सेल्फ ऑन, जो कि वसुदेव का मन में आ गए थे कि मेरा परिवार को मैंने सुखी बना नहीं पाए, इसका कारण कौन हूं मैं हूं, मेरा पत्नी को मैंने सुख दिला नहीं पाए, इसका कारण कौन हूं मैं हूं स्वयं, क्योंकि मेरा कर्तव्य होता था मेरा परिवार को देखभाल करना, मेरा कर्तव्य होता था मेरा बच्चा को देखभाल करना, लेकिन मैं कर नहीं पाया, क्यों कर नहीं पाया ना, अपना परिजन के द्वारा मेरे को सहयोग नहीं, कोऑपरेशन नहीं मिले। बच्चा जब बड़ा हो जाते हैं तब माता पिता का कितना आशा रहता है मन में कि मेरे बच्चा को मैंने इतना देखो 10 महीना 10 दिन अपना गर्भ में रखा, बाद में इतने अच्छे तरीके से पाला लालन किए, स्कूल में पढ़ाई कराए, सब कुछ कराए, जब बाद में वही बच्चा माता पिता को दुख देते हैं, सबसे ज्यादा दुख उसमें देते हैं, वास्तविक में भी दिखाई पड़ता है इसी तरीके से। पहले जमाने में ऐसा नहीं था कि आजकल ऐसा हो गए, एक परिवार में अगर 4 बच्चा है ना तो 4 बच्चा माता पिता सर्कस का पार्टी का में भी घूमते रहते हैं, बोलते 3 महीना बड़ा बेटा का घर में तो दूसरा 3 महीना छोटा बेटा का घर में, क्योंकि माता पिता तब हो जाते हैं सामने बच्चे का सामने एक हेडेक, तब माता बच्चा नहीं सोच पाते हैं कि यही माता पिता मेरे को बचपन में देखभाल किए थे, यही माता जिसका 10 मास 10 दिन मैंने गर्भ में था, जिनका आशीर्वाद का कारण मैंने भूमिष्ठ हुआ हूं इसी जगत में, और उसी माता पिता सामने बच्चे का सामने हो जाते हेडेक, तब माता पिता का बोलते चलो जाओ आप ओल्ड एज होम में वृद्धाश्रम में जाओ, तब माता पिता का जीवन में दुख मिलता है। आप कोई भी ओल्ड एज होम में जाकर आप देख सकते हैं आराम से, किसी को अगर आप पूछेंगे ओल्ड एज होम में वृद्धाश्रम में जाकर तो कितने सारे माता पिता उधर रहते हैं, बच्चा घर में नहीं रखना चाहते हैं उनको, बोलते आप ओल्ड एज होम में जाओ मैं पैसा भेज दूंगा, ये सब दुख का कारण। इसको कहते कि हृदय दैवत्य, भक्ति विनोद ठाकुर इसको कहते कि ये भी एक प्रकार अनर्थ है, और इसी अनर्थ का कारण आपका चित्त भ्रम तबो ही तुम्हार, इसमें आपका चित्त भ्रम हो जाता है, तब जीवन में आपको दुख मिल जाता है, जिस तरीके से वसुदेव का जीवन में दुख आ गए थे कि धर्म पत्नी को देखभाल नहीं कर पाए, आसक्ति थी पूरा, एक आसक्ति का कारण कि एक आसक्ति था अपना धर्म पत्नी, दूसरी है मेरा सब मेरा ही पुत्र है, लेकिन मैं बाप होकर मैं पिता होकर किसी को मैंने रक्षा कर नहीं पाया, क्यों रक्षा कर नहीं पाया कि परिजन के सहयोग मेरे को नहीं मिले, जिसके लिए उनका जीवन में दुख आ गया था, जिसके लिए उसका मन में शंका था मेरे भाले भी मैंने छोड़ के आ गए नंद महाराज के पास, लेकिन अगर इधर भी आके कुछ करे तो, इसके लिए उनका मन में शंका हो गए थे, क्योंकि उनका उन्हें शक हो गए थे कि मेरा मैंने तो रिजल्ट मेरे को मिला कि कंस के द्वारा किस तरीके से मैंने अत्याचारित हुआ, किस तरीके से कंस ने मेरे को परेशान की, उसी पड़ी से नंद महाराज को भी नहीं होना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने पूछने लगे कि आपको तो कुछ पता नहीं है ना। ये सब हृदय देव का कारण, पूर्व जीवन का कर्म फल, अंतिष्ट फल, ये हृदय देवल के साथ को रिलेटेड होता है। वो बात जिसमें वर्णन किए कि हृदय देवल्य पूर्व जीवन का अदिष्ट फल, ये दोनों को रिलेटेड समार्थक शब्द है। आसक्ति स्वाभाविक रूप से आसक्ति रहता है परिवार के ऊपर, और जिस परिवार को मैंने देखभाल कर नहीं पाए तो अपना जीवन में धिक्कार आ जाता है कि मैंने क्या किया, शादी विवाह किया लेकिन अपना धर्म पत्नी को मैंने रक्षा कर नहीं पाया, कंस को हाथ से मैंने धर्म पत्नी को मैंने रक्षा कर नहीं पाया, अपने पुत्र को मैंने रक्षा कर नहीं पाया कंस का हाथ से, सब पुत्र निधन हो गए इसी तरीके से, अंतिम कन्या को भी मैंने रक्षा कर नहीं पाई, वो भी सर्वलोक चला गया। इसके लिए उनके जीवन में, वसुदेव का जीवन में एकदम धिक्कार, सिर्फ हृदय देवल का कारण धिक्कार तो कहते हैं कि चित्त भ्रम, ये चित्त भ्रम होने का कारण हृदय देवल। ये जो चार प्रकार अनर्थ गोबर वर्णन की है मिश्रा चक्रपा, तो स्वरूप भ्रम अशोतृष्णा अपराध और हृदय दैवल्य, अरे हृदय दैवल्य से जीवन में शोक मतलब दुख आ जाता है हृदय दैवल्य के कारण, जिस तरीके से वसुदेव का जीवन में शोक उपस्थित होगा। आगे चलते हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद जो अध्याय आ रहा है इसका नाम है पुतना वध, उसमें वर्णन किया कि जो चार प्रकार अनर्थ, एक एक डिवन एक एक अनर्थ का प्रतीक होता है, किस तरीके से अनर्थ का प्रतीक हुए। आगे चलते इसका पहला नेक्स्ट जो अध्याय है इसका नाम है पुतना वध, पुतना वध में इसका वर्णन भी किया कि पुतना चेत गुरु, चेत गुरु का प्रतीक थी, किस तरीके से इसको अनर्थ को निवृत्ति देना है। भक्ति विनोद ठाकुर विष्णु चक्रतिपाद हमारे गौरी आचार्य विंद बहुत ही अच्छे तरीके से इसका वर्णन भी किया है। तो मूल जो है यह है कि हृदय दैवल्य का कारण जीवन में दुख प्राप्त होता है, जिस तरीके से वसुदेव का जीवन में दुख आ गए थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंतरा श्रीमद् भागवतम की श्रील प्रभुपाद की गौरूपे मन वंशाकृत्य कृपा सिंधु चौपीता पावनेभ्य वैष्णवेभ्य नमो नमः। पर्सनल प्रश्न Thank you.